सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं अन्ताय मज्जहीणं दशदशय चावधीरं पडमजिणं वोच्छं नमिऊणन्तं मणंतरुत्तुंगसन्नमयिदुग्गेच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब पंचम पुस्तक में अंतरानुगम की बात हम देख रहे हैं, उसमें पृष्ठ संख्या 23 पर आ गए। अब यहाँ 23 नंबर का सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नारकियों की बात चल रही है ना, अभी मार्गणाओं की बात अपनी चल रही है। ओग के यानी गुणस्थान की अपेक्षा से कथन समाप्त हुआ, अब मार्गणाओं की बात कर रहे हैं। तो उसमें नारकियों में जो चार गुणस्थान है, उसमें से पहले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जो गुणस्थान है, उनके बारे में अंतर की बात यहाँ चल रही है। अभी काल का समाप्त हुआ, अंतर का अर्थ है उस गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में जावे और वापस लौटे, उसके लिए बीच में कितना काल जाता है, नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, उसकी बात चलेगी। तो उपकसेन 33 सागरोवमाणी देसुनानी, उसके पहले हमने देखा था कि नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा ही नारकियों में पहला चौथा गुणस्थान तो हमेशा रहेगा, ये बात हो गई थी। अब जघन्य और उत्कृष्ट जो अंतर है, वो एक जीव की अपेक्षा घट सकता है, तो एक जीव की अपेक्षा से अंतर मूर्त है, जघन्य अंतर मूर्त है, यानी पहले से अन्य गुणस्थान में चला जाए वापस पहले में आवे, तो वो उसका मिथ्यात्व का जघन्य अंतर। और सम्यक दृष्टि नारकी नीचे के गुणस्थान में जाकर तीसरे पहले फिर वापस चौथे में आवे, उसका चौथे का जघन्य अंतर। अब यहाँ उत्कृष्ट अंतर बताने जा रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। अब इसको घटा के दिखाएंगे। पहले मिथ्या दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, यानी कोई मिथ्या दृष्टि नरक में उत्पन्न हुआ, वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, फिर मिथ्यात्व में गया, उत्कृष्ट काल तक मिथ्यात्व में गया, फिर अंत में फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो उसका उत्कृष्ट काल हम देखेंगे। तो यहाँ बताते हैं, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ और 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्तों को प्राप्त कर। अभी यहाँ क्या लिखा है मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर इसमें करेक्शन बताऊंगी। आयु के थोड़े अवशेष रहने पर अंतर को प्राप्त हो, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अंतर को तो पहले प्राप्त करेंगे तभी वो पूरा आयुकाल उसका अंतर वाला समझेगा, तो यहाँ ऐसा लिखना चाहिए, वेदक सम्यक्तों को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हो। ये बाद में, ये बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, देखो बाद में जो लिखा है उसको राउंड करना है। वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके उसके आगे ऐसा ये साइन लिख देना, और अभी ये जो अंतर को प्राप्त हो ना उसको ऐसा राउंड कर देना और उसके साथ इसको जोड़ना, यानी वो तीन शब्द यहाँ लेना है, तभी हम ठीक से पढ़ेंगे इसको। वेदक सम्यक्तों को प्राप्त कर, यानी कौन सा, सादी मिथ्या दृष्टि, 6 पर्याप्ति पूरी हुई, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, और फिर वेदक सम्यक तो वो प्राप्त हुआ और अंतर को प्राप्त हो गया। मिथ्यात्व का अंतर पड़ गया ना, पहले मिथ्यात्व के साथ जन्मा था, अब मिथ्यात्व में से उसको सम्यक दर्शन हुआ तो अंतर उसका मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। तो अंतर को प्राप्त हो, आयु के थोड़े अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी सातवें नरक में आया है। पहले तीन अंतर्मुर्त के बाद सम्यक तो प्राप्त किया, पूरे उसके थोड़े कम 33 सागरोपम तक वो सम्यक तो में रहा, यानी मिथ्यात्व का अंतर चालू रहा, वापस मिथ्यात्व में गया तो वहां तक तो उसको अंतर कहेंगे, इतना सब पूरा बड़ा अंतर है। तो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। हाँ, इतना बड़ा अंतर मिथ्यात्व का अंतर नारकियों में। हमने तो देव मनुष्यों की अपेक्षा तो 66 सागर भी देखा था, मिथ्यात्व का अंतर। यह अकेले नारकी ही रहा, उसी भाव में लेना है, ऐसा नहीं कि वो फिर दोबारा नारकी हो गए, ऐसा नहीं लेना है। अब ये लास्ट में कितने अंतर्मुर्त छोड़ रहे, तो मिथ्यात्व में गया, पुनः तीर्यंच आयु को बांध कर विश्राम ले, फिर निकला। मिथ्यात्व में गया क्योंकि सातवें नरक से तो तीर्यंच आयु बांध कर वो निकले। इस प्रकार 6 अंतर्मुर्तों से कम 33 सागरोपम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है ना, यानी मिथ्यात्व के साथ जन्मा, सम्यक दृष्टि हुआ और फिर वापस मिथ्यात्व में आया। उसके बाद अब असंयत की बात करेंगे। अब असंयत सम्यक दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। हाँ, वो सम्यक्त्व का अंतर, यहाँ मिथ्यात्व का अंतर देख रहे, अभी हम सम्यक्त्व का अंतर देखने जा रहे। नारकी चौथा गुणस्थान वाला, यानी वो चौथे गुणस्थान में आया, फिर चौथे से फिर मिथ्यात्व में गया, उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व में रहा, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, तब हम कहेंगे उसको सम्यक्त्व का अंतर। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। देखो, अब असंयत सम्य दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म के 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर, यानी अभी मिथ्यात्व के साथ जन्मा है, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम लेकर विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। ये जो पहले हमने देखा वैसे ही, अभी हमको सम्यक्त्व का अंतर देखना है, वहां तो हमने मिथ्यात्व का देखा। पुनः संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी अंतर्मुहूर्त में ही मिथ्यात्व में चला गया, यानी सम्यक्त्व का अंतर चालू हो गया, प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। अब आयु के अंत में ये सातवें नरक का नारकी है तो जाएगा तो तिर्यंच में। अभी ये स्टार्टिंग में वेदक सम्यक्ति होकर फिर मिथ्यात्व में आया था, पूरे 33 सागर में कुछ कम इतने काल तक मिथ्यात्व में ही रहा, फिर उसी मिथ्यात्व काल में तिर्यंच आयु बांधी। तो आयु के अंत में तिर्यंच आयु बांध कर पुनः अंतर्मुहूर्त विश्राम करके विशुद्ध होकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमको सम्यक्त्व का अंतर देखना है। तो स्टार्टिंग यानी 33 सागर के स्टार्टिंग में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया था, फिर गिर गया, पूरा उसके मिथ्यात्व में ही काल बीता, तिर्यंचायु भी बांधी मिथ्यात्व अवस्था में, और फिर बाद में एक अंतर्मुहूर्त में विशुद्ध होकर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया, और फिर उसमें से आएगा नीचे। वो तो बाद में फिर, क्योंकि मरेगा तो मिथ्यात्व में ही मरेगा, परंतु ये अपने को तो सम्यक्त्व का अंतर प्रूव करना है। इस प्रकार इस गुणस्थान का अंतर लब्ध हुआ। यहाँ उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ ऐसा क्यों लिखा, स्टार्टिंग में तो वेदक सम्यक्त्व लिखा और अंत में उपशम सम्यक्त्व लिखा, ऐसा क्यों? फिर दोबारा कौन से तीन प्रकृतियों की? मिथ्यात्व का उद्वेलना किसमें हो जाएगा? कौन से तीन प्रकृति की उद्वेलना होगी? तीन प्रकृतियों की उद्वेलना कभी नहीं होती, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो ही प्रकृतियों की उद्वेलना होकर वे मिथ्यात्व रूप हो जाती है ना। वेदक काल जो हमने देखा था, वेदक योग्य काल, वो तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। पल्ले के असंख्यातवे भाग, और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आते, यानी एक सागर की भी आयु होगी तो भी उसको फिर दोबारा जो करेगा सम्यक तो उपशम सम्यक तो ही होगा। ये बड़ा काल है ना, तो उसमें पहले उसकी सत्ता में जो तीन प्रकृतियां थी, परंतु वो उद्वेलना होकर अभी एक प्रकृति बन गई है, अभी उसको सम्यक तो करेगा तो उपशमिक सम्यक तो ही करेगा, ये बात बतानी है। क्योंकि इतने लंबे काल तक तीनों प्रकृतियों की सत्ता रहेगी नहीं। ये 33 सागर का काल तो बहुत बड़ा है।
वो तो एक सागर ही था ना।
कौन सा?
पल्ले,
वो पल्ले का असंख्यात भाग है, तो ऐसे तो एक सागर में कितने असंख्यात होगे भाग। पल्ले ही 10 कोड़ा कोड़ी होते, एक सागर में पल्ले की संख्या तो 10 कोड़ा कोड़ी है, और ऐसे पल्ले के असंख्यातवे भाग तक ये तीनों की संख्या रहती है सत्ता। वो पल्ले का असंख्यात भाग भी असंख्यात करोड़ वर्ष होता है, यानी असंख्यात वर्षों तक उनकी सत्ता बनी रहती है। यानी यहाँ हमने किसका अंतर देखा? चौथे गुणस्थान का अंतर देखा। सातवें नरक में आकर पहले तीन अंतर्मुहूर्त के बाद वो संवेदक सम्यक्ति हुआ, फिर वहां से अंतर्मुहूर्त में ही गिरकर नीचे मिथ्यात्व में आया, पूरे लाइफ टाइम तक मिथ्यात्व में रहा, तिर्यंचायु भी बांधी मिथ्यात्व अवस्था में, और फिर एक अंतर्मुहूर्त में विशुद्ध होकर फिर उपशम सम्यक्ति हुआ, फिर गिरा और मिथ्यात्व में जाकर फिर मर गया। इस प्रकार इस गुणस्थान का अंतर लब्ध हुआ, पुनः मिथ्यात्व को जाकर नरक से निकला। इस प्रकार 6 अंतर्मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम काल असंयत सम्य दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। अभी अभी हमने ऊपर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर देखा था, यानी शादी वाला मिथ्यात्व लिया ना वहां से, यानी वहां भी नरक में आया, सम्यक तो प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, तो पूरे लाइफ टाइम तक तो सम्यक भी रहा और अंत में मिथ्यात्व हुआ, तो ये मिथ्यात्व का अंतर इतना बड़ा हुआ। मर के नरक के आए तो मिथ्या दृष्टि के साथ ही नरक में आए ना, सातवें नरक में जाएगा तो मिथ्यात्व के साथ ही आएगा, किसी भी नरक में जाना है क्योंकि वेदक समय दृष्टि है, वेदक सम्यक्त्व के साथ तो किसी नरक में नहीं जाएगा, कृतकृत्य वेदक हो तो ही जा सकता है जो क्षायिक होने जा रहा है, यानी या तो क्षायिक वाला या कृतकृत्य वेदक वाला, वो भी पहले नरक में आ सकता है। हाँ, तो सातवें में जो कोई मिथ्यात्व के साथ ही, हाँ, नीचे के पहले के नीचे कहीं भी उत्पन्न हुआ है तो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होता है। अब ऐसा है कि पहले से छठे तक के जो नारकी है वो सम्यक्त्व के साथ वहां से मरकर मनुष्य में आ सकते हैं, सम्यक्त्व उनका बना रहे, परंतु सातवें नरक का नारकी है तो नियम से मिथ्यात्व में ही मरेगा, ये रूल है, और वो तिर्यंच में ही जन्मेगा, वहां ऑप्शन नहीं उसको। हमने अभी देखा था ना, भले 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा फिर भी मरेगा मिथ्यात्व में और उत्पन्न होगा वो हिंस्र शापदों में, जैसे वाघ सिंह आदि में। अब सासादन का और तीसरे गुणस्थान का काल देखेंगे। शासन सम्मादिट्ठि सम्मामिच्छादिट्ठिणम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। सासादन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर होता है। अंतर की बात है, अंतर यानी कोई भी जीव उस गुणस्थान में नहीं है, ऐसा कभी कभी बन सकता है, तो कितने काल तक ऐसा बनेगा कि तीन भुवन में कोई भी जीव सासादन में नहीं है, तो एक समय तक बन सकता है कम से कम, और अधिक से अधिक अभी बताएंगे पल्ले के असंख्यात विभाग तक बन सकेगा। जैसे अभी वो समझाते कैसे, नरक गति में स्थित सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि सभी जीव अन्य गुणस्थान को प्राप्त हुए और दोनों ही गुणस्थान एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हो गए। यानी नारकियों में, किसी भी नारकी में पहले से सातवें नरक तक के कोई नारकी दूसरे या तीसरे गुणस्थान, दूसरे की बात एट ए टाइम ले लेंगे हम, दूसरे में नहीं ऐसी बात हो सकती है, या कोई भी नारकी तीसरे गुणस्थान में नहीं है ऐसा भी हो सकता है, तो कम से कम कितने काल तक हो सकता है, तो एक समय तक हो ही सकता है। पुनः द्वितीय समय में कितने ही उपशम समय दृष्टि नारकी जीव, उपशम क्यों लिखा, क्योंकि सासाधन में आने के लिए उपशम की जरूरत है, तो उपशम समय दृष्टि नारकी जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। अभी सासाधन के लिए उपशम समय दृष्टि और तीसरे में आने वाले कहाँ से आएंगे, चौथे में से आएंगे, तो चौथे में से आएंगे या पहले में से आएंगे। तो मिथ्या दृष्टि तथा असंयत समय दृष्टि नारकी जीव सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानों का अंतर एक समय प्रमाण लब्ध हो गया। ये अंतर की बात चल रही। अब उत्कृष्ट अंतर भगत, नाना जीवों की अपेक्षा नारकी दूसरा तीसरा गुणस्थान उनका उत्कृष्ट अंतर बताए रहे। उक्कसेन पलिदो वमस्स असंख्ये यदि भागो, उक्त दोनों गुणस्थानों का वो न पूरा करना, आधा ही हो गया। नीचे जो सूत्र का अर्थ किया है आपने, किया करेक्शन भाई? अच्छा, उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। जैसे अभी समझा रहे, नरक गति में स्थित सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये सभी जीव अन्य गुणस्थानों को प्राप्त हुए। दूसरे गुणस्थान वाले कहाँ गए अशोक भाई? सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व की बात चले, दूसरे वाले कहाँ गए? पहले में ही, उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है। और तीसरे वाले कहाँ गए? पहले या चौथे में, वो दूसरे में नहीं आएंगे। हाँ, और दोनों ही गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गए। इन दोनों गुणस्थानों का अंतरकाल उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यात पे भाग मात्र होता है। अंतर की बात चल रही, यानी पल्योपम या असंख्यात वर्षों तक कोई भी वहाँ नारकी दूसरे या तीसरे में गुणस्थान में नहीं है ऐसा हो सकता है, ये बात बताई उन्होंने। पुनः उतना काल व्यतीत होने पर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से उक्त दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर, कारणभूत परिणामों से चाहिए कि गुणस्थानों से, एक मिनट ऊपर हम देखते हैं, अपपणों कारणीभूत गुणठाने हिंतो। अच्छा, गुणस्थानों से यानी कहाँ से आए? अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से यानी सासाधन वाला चौथे से आएगा और तीसरा गुणस्थान वाला वो चौथे से भी आएगा और पहले से भी आएगा, कहाँ से आएगा उसकी बात चल। तो अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से उक्त दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर, यानी कहाँ से आए हैं, तो अपने अपने कारणभूत जो गुणस्थान है वहाँ से आएंगे और दूसरे या तीसरे को प्राप्त होंगे। पल्योपम का असंख्यात्वा भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर लब्ध हो गया। अब आगे हम देखते हैं, एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पडुच्च जहन्नेन पलिदोवमस्स असंख्येज्यदि भागो अंतो मुहूर्तम। एक जीव की अपेक्षा बता रहे, एक जीव की अपेक्षा सासाधन का जघन्य काल कितना हो सकता है और कैसे हो सकेगा? सासाधन का काल, सॉरी मैंने काल पूछा, अंतर पूछना है मुझे, अंतर, अंतर कैसे गिनेंगे? एक बार सासाधन में आया है, वहां से मिथ्यात्व में जाते उसका अंतर चालू हो गया। दोबारा जो वो जीव सासाधन में आएगा, तो दोबारा सासाधन में आने के लिए क्या कंडीशन है? कौन सा वाला? प्रथम ऑप्शन। हाँ, यानी दोबारा प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो दोबारा प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने के लिए वो बीच में पल्ले के असंख्यात भाग इतना वर्ष चले जाएंगे। तो पल्ले का असंख्या तो अभाग प्रमाण काल बीत जाने पर जब दोबारा सास उपशम करेगा और बाय चांस वहाँ अनंत अनुबंधी का उदय होगा तो वहाँ आएगा, इसलिए उत्कृष्ट काल वो बता दिया। देखो हम पढ़ेंगे नीचे उसका अर्थ क्या है। उक्त दोनों गुण स्थानों का जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्यपम का असंख्यात्व भाग ये सासाधन के लिए, और सम्यक मिथ्यात्व में कितनी जल्दी आ सकता है वापस, एक अंतर्मूर्त यानी तीसरे वाला पहले में गया तो उसका अंतर शुरू हुआ, पहले से वापस तीसरे में आ गया तो उसका जघन्य अंतर एक अंतर्मूर्त, वैसे तीसरे में से चौथे में गया और वापस तीसरे में आ गया तो भी उसका वो काल अंतर्मूर्त, काल यानी अंतर। जैसे जैसा उद्देश्य है उसी प्रकार निर्देश होता है, इस न्याय के अनुसार सासाधन सम्यक दृष्टि का जघन्य अंतर पल्योपम का असंख्यात्वा भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ये दोनों गुणस्थानों की बातें एक ही सूत्र में बतानी है, इसलिए क्रमशः ये दोनों का अलग अलग बता दिया। अब यहाँ उदाहरण के साथ बताएंगे। अब क्रमशः सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि इन दोनों गुणस्थानों का अंतर का उदाहरण कहते हैं, यानी पहले सासाधन की बात करेंगे बाद में सम्यक मिथ्यात्व की करेंगे। एक अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी जीव अथवा उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य सादी मिथ्या दृष्टि नारकी जीव, दो बातें लिखे, अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि के लिए एक कंडीशन डालिए, कौन सी, जो उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य यानी उपशम सम्यक्त्व होने योग्य ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि। उपशम सम्यक्त्व होने योग्य सादी मिथ्या दृष्टि कौन होगा कि जिसकी सत्ता में ये जो दो अन्य दो प्रकृतियों की सत्ता सागरोपम पृथक्रिया उसके थोड़ी कम है, यानी उसका उपशम योग्य काल चल रहा है तब, क्योंकि हमने देखा था एक बार प्रथम उपशम सम्यक्त्व के बाद मिथ्यात्व में आता है सादी मिथ्या दृष्टि होता है तो असंख्यात वर्षों तक वो तीन प्रकृतियों की सत्ता यानी तीनों मिथ्यात्व की तो है ही है, अन्य दो की जो सत्ता है वो जो बहुत लंबे काल की अंतकोड़ाकोड़ी की है वो घटते 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 जब सागर के आसपास हो जाएगी तब वो फिर दोबारा उपशम कर सकता है, इसलिए यहाँ कहा उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि। नारकी जीव, उसमें भी नारकी लेना है, तीनों करणों को करके उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक्त्व के साथ कितने ही काल रहकर पुनः सासाधन गुणस्थान को जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अब उसका अंतर चालू हो गया, पहले में कौन जाता है उसकी बात की इतनी लंबी लंबी। इस प्रकार अंतर को प्राप्त होकर अब वो अंतर में बता रहे पल्योपम के असंख्यात्वे भाग मात्र काल से उद्वेलना कांडकों से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों की स्थितियों को सागरोपम पृथक्त्व से नीचे अर्थात कम करके क्या कहते हैं। अभी हमको अंतर देखना है ना, जघन्य अंतर देखना है, तो मिथ्या दृष्टि नारकी जो है सादी या अनादि, पहले औपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ वहाँ से गिरकर सासाधन में आया और सासाधन में से मिथ्यात्व में चला गया, उसका अंतर चालू हो गया। अब पल्लप के असंख्यात्व भाग प्रमाण वर्ष बीत जाने पर उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसमें बात क्या होगी उतने काल में, हाँ तो उद्वेलना कांडक यानी उद्वेलना की, उद्वेलना करते करते वो अन्य दो की प्रकृति की सत्ता कितनी रहेगी तो सागर पृथक वगैरह। उद्वेलना कांड कौन से, कौन कौन सी प्रकृतियों की, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये दो प्रकृतियों की स्थितियों को सागरोपम पृथक्त्व से नीचे करके यानी उससे कम करके, ये कम करने का कार्य उद्वेलना कांडकों के द्वारा हुआ है। उद्वेलना पूर्ण नहीं हुई है परंतु अभी चल रही है तो स्थिति कम हो गई। पुनः तीन करण करके यानी उपशम योग्य हुआ अभी फिर वो, तब फिर से क्योंकि हमको जघन्य काल लेना है, और काल बीत जाता पूरी उद्वेलना हो जाती तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो घटित हो ही जाता, परंतु हमें कम से कम अंतर देखना है, इसलिए जितना योग्य चाहिए उतने होते फिर उसने तीन करण से औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त किया। उपशम सम्यक्त्व के काल में छह अवली काल अवशेष रह जाने पर ये भी छह अवली काल लिया, क्योंकि अंतर हमको कम देखना है। यदि एक समय कहते तो अंतर और बढ़ जाता। हमको बड़ा अंतर नहीं चाहिए, हमको कम से कम अंतर चाहिए। तो छह अवली अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पल्लवपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर काल उपलब्ध हो गया। ये अंतर का काल हम देख रहे हैं, कम से कम अंतर इतना तो चाहिए ही, उसके पहले दोबारा सासादन में नहीं आ सकता। अब एक सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। ये तो सासादन की बात हो गई, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल हो गया। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर ये उसका अंतर चालू हो गया। सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरे चौथे में या पहले में गया, वहां पर अंतर मुहूर्त का अंतर देकर पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। तो जघन्य अंतर तीसरे गुणस्थान का ये एक अंतर मुहूर्त हो गया। इस प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर लब्ध हो गया। ये मुंह के ऊपर बिंदी दिख रही है, वो नहीं चाहिए। हाँ, अब आगे अभी उत्कृष्ट अंतर यहाँ घटित करेंगे। हमने पहले पहले का और चौथे का उत्कृष्ट अंतर देखा था, अब यहाँ दूसरे तीसरे गुणस्थानों का नारकियों का उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं। उपकसेन तेतीसम सागरोवमाणी देशुनानी, उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम काल है। ये नारकियों की बात चल रही है। जब हमने सामान्य से बात की, वहाँ कोई गति की अपेक्षा नहीं देखी थी, अकेले गुणस्थान में जब हम देखा था हमने कि सासादन का उत्कृष्ट काल कितना होता है एक जीव की अपेक्षा, तो क्या देखा था याद है? हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम। जैसे किसी ने पहले में पहले उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया, गिरकर सासादन में आया, मिथ्यात्व में चला गया, उसका अंतर चालू हो गया। अब पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो मिथ्यात्व के साथ घूमा, और जब ये मोक्ष प्राप्त है अभी उसके काल आ गए नजदीक, कुछ अंतर्मुर्त बाकी रह गए, फिर औपशमिक समय दृष्टि होकर सासाधन में चला गया, फिर मिथ्यात्व हुआ, और फिर आगे कुछ अंतर्मुर्त में मोक्ष प्राप्त किया। तो ये उत्कृष्ट काल एक जीव, परंतु वहाँ गति की कोई हमें कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ गति की कंडीशन है, तो एक ही भाव में हम नारकी के एक ही भाव में उसको घटित करेंगे, तो 33 सागर वाली जो आयु है सातवें वाली, उसी में ये घटित करेंगे। यानी उसमें वहाँ जाने के बाद वो सासादन में आया, फिर वहाँ से छूट गया, फिर अंत में फिर वो औपशमिक समय दृष्टि होकर सासादन में आ गया, ऐसा घटित करेंगे अभी पढ़ेंगे। तो दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम काल है। वो कुछ कम में कैसे कैसे घटित करना उसको अभी समझा रहे हैं। जैसे एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, पुनः सासादन गुणस्थान में जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हो, उसका अंतर चालू हो गया। नरक में जाने के पश्चात तीन अंतर्मुहूर्त में वो सम्यक्ति हुआ, और फिर गिर के सासादन में आकर मिथ्यात्व में जाते ही अंतर चालू हो गया। आयु के अंत में तिर्यंच आयु को बांध कर, यानी मिथ्यात्व में ही रहा, आयु के अंत में तिर्यंच आयु बांधी मिथ्यात्व के साथ ही, उसके बाद विशुद्ध हो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पुनः उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। अभी एक समय घटित किया, अभी छह अवली नहीं, क्योंकि छह अवली कहते तो अंतर कम हो जाता, उत्कृष्ट अंतर देखना है, इसलिए एक समय पहले वो आ गया। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्या, यानी इतना अंतर हो गया उसका 33 सागरोपम में इतने कम, तो लास्ट में कितने उसमें से अंतर्मुहूर्त घटाने हैं, तो पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर्मुहूर्त रहकर निकला। इस प्रकार समयाधिक यानी एक समय अधिक पांच अंतर्मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम सासादन गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर है। यानी एक जीव की अपेक्षा वो भी नारकी के नारकियों में वो लिखा नहीं परंतु अपना विषय वही चल रहा है, इसलिए वो समझना चाहिए। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होकर 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को जाकर देशों न 33 सागरोपम आयु स्थिति को अंतर रूप से बिताकर, यानी वो उसका सम्यक मिथ्यात्व का अंतर चल रहा है, या तो मिथ्यात्व में गया या सम्यक्त्व में गया, तो 33 सागरोपम बिताकर मिथ्यात्व के द्वारा आयु को बांध कर विश्राम ले, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। यानी जब आयु बांधने का अवसर था तो वो मिथ्यात्व में ही था, फिर पश्चात मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। हाँ, जब सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो अंतर का उसका काल घटित हुआ। अब उसके बाद कितने अंतर मुहूर्त में वो मरेगा, तो कहते पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर मुहूर्त रहकर निकला ने सातवें से मरकर वो तिर्यंच हुआ। इस प्रकार 6 अंतर मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम काल सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब पहले आदि सभी पृथ्वियों में घटित करेंगे, अभी तो उत्कृष्ट बता दिया सातवीं का। अब पढ़मादि जाव सप्तमीय पुढ़वीय नेरयेसु मिच्छादिट्ठि असंजत सम्मादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। यानी सभी पृथ्वियों में, पहले से सातवीं पृथ्वियों में सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये तो जीव निरंतर पाए जाएंगे नाना जीवों की अपेक्षा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उन गुणस्थानों में कोई नारकी है ही नहीं। तो उसका अर्थ करते हैं प्रथम पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का अंतर कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, निरंतर है। वो अंतर पड़ेगा तो दूसरे तीसरे गुणस्थान में पड़ सकता है, क्योंकि सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों से रहित नारकियों की सदा उपलब्धि नहीं होती, यानी उनका विरह कभी नहीं होता, हमेशा वो उपलब्धि होती है। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमुत्तम, उक्त दोनों गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि अभी ये घटित करेंगे वो तो आसान है, अभी अन्य गुणस्थान से आएगा वापस लौटेगा तो उसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि इन दोनों को ही अन्य गुणस्थान में ले जाकर सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल से पुनः उसी गुणस्थान में पहुंचाने पर अंतर्मूर्त मात्र काल का अंतर पाया जाता है। ये निकालना पहुंचाना इन्हें हमको सोचना है। वैसे अब उत्कृष्ट बात करेंगे, जघन्य तो बता दिए अंतर्मूर्त है। उक्कस से न सागरोवम 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागरोवमाणि देशुनानी। प्रत्येक नरक की जो आयु है उत्कृष्ट है उसको यहाँ बताया है, और उसको देशुन कहा, उसमें से कुछ कम। उक्त दोनों गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देशोन एक सागरोपम, एक के बाद का कॉमा निकालना और सागरोपम के बाद लगाना, एक सागरोपम 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम काल है। तो एक को अलग क्यों निकाला और बाकी अलग एक साथ क्यों रखे? हाँ भाई देवेंद्र भाई आप मदद करो जरा। तो सब एक साथ लिखना था ना, 1, 3, 7, एक को अलग क्यों निकाला? उसकी कहाँ बात है, पहले पृथ्वी में कौन सा अंतर देखेंगे आप? सम्यक तो क्या अंतर पड़ेगा उनका, उनका क्या कहना है? पहली पृथ्वी में सम्यक तो के साथ जाता है, पहली पृथ्वी में सम्यक तो के साथ जाने वाले को अंतर पड़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? हाइक वाला ही है, तो उसका अंतर का सवाल ही कहाँ है? वो मिथ्यात्व में जाएगा तो अंतर होगा। तो मेरा क्या प्रश्न था, देखो प्रश्न सादा है और वो कुछ आप करना नियोग मत सोचो, व्याकरण सोचो खाली। एक तीन सात वगैरह, अभी प्राकृत देखो, उक्कसेन कितना है, एक के लिए क्या लिखा है सागरोपम, और जहां तीन सात दस सत्रह बाईस तैतीस है वो सागरो वमाणी, एक वचन अनेक वचन, वो तो देशुन आ गए ना उसमें। ये मेरा प्रश्न क्या था, एक को अलग निकाला और बाकी को अलग क्यों निकाला? एक सागरोपम एक वचन है और अनेक सागरो वमाणी अनेक वचन है। हिंदी में तो सागर एक वचन है वो भी सागर, और अनेक वचन है वो भी सागर। जैसे एक पेड़ है और अनेक पेड़ है, तो है पर बिंदी पड़ेगी क्या है ना उसमें, ये व्याकरण है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है एक को अलग क्यों निकाला, एक सागरोपम अनेक सागरो वमाणी, ये तो संस्कृत में और प्राकृत में भेद है इसलिए अलग निकाला। हिंदी में तो ऐसा कोई वैसे जरूरत नहीं है, परंतु अभी ऊपर का ही ट्रांसलेशन है इसलिए एक सागरोपम और फिर तीन सात दस वगैरह वगैरह सागरोपम काल है। यहाँ पर तीन आदि संख्याओं में सागरोपम शब्द प्रत्येक पर संबंधित करना चाहिए, यानी सागरो वमाणी ये जो है ना, यानी तीन सागरोपम सात सागरोपम हर एक के साथ दस सागरोपम वगैरह, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय से प्रथम पृथ्वी में देशों न एक सागरोपम, द्वितीय पृथ्वी में देशों न तीन सागरोपम, तीसरी पृथ्वी में देशों न सात सागरोपम, चौथी में देशों न दस सागरोपम, पांचवी में देशों न सत्रह सागरोपम, छठी में देशों न बाईस सागरोपम और सातवीं में देशों न तैतीस सागरोपम अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्थ इन दोनों गुणस्थानों का सातवीं पृथ्वी में देशों का प्रमाण छह अंतर्मूर्त मात्र है। अब वो कैसे घटित करेंगे, वह नारकियों के वोग वर्णन में कहे आए हैं इसलिए यहाँ नहीं कहते। तो यहाँ किसका अंतर देखना है हमको, दोनों गुणस्थानों के ने मिथ्या दृष्टि का अंतर। तो मिथ्या दृष्टि का अंतर जब देखेंगे सातवीं नरक के लिए तो कैसा देखेंगे हम, वहां तो मिथ्यात्व के साथ जन्मा, तो पहले तीन अंतर्मूर्त के बाद यानी उसमें सम्यक्त्व भी हुआ, पहले मिथ्यात्व के साथ जन्मा ना, तो छह पर्याप्ति पूरी हुई, फिर विशुद्ध हुआ, फिर सम्यक्त्व को यानी बीच में विश्राम का भी एक अंतर्मूर्त है, फिर विशुद्ध हुआ और सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ यानी मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, वापस उसको मिथ्यात्व में कब लौटाना है, देशु न उस जो पूरी जो आयु है वो बिताने अंत में उसको मिथ्यात्व में लाना, तो ये मिथ्यात्व का अंतर घटित हो जाएगा। ये पहले तीन, पहले तीन और अंत में तीन, वो तो मिथ्यात्व में आया तो उसका अंतर पूरा हुआ, तो मिथ्यात्व में आकर पहले आयु बांधा तिरियंच आयु की बंद किया, फिर विश्राम लिया और फिर वो वहां से निकला, उसके लिए तीन अंतर्मूर्त अंत में भी घटित होते हैं। ये पहले हमने गुणस्थान में देखा था, क्या नहीं लिखा,
डॉट 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 मारा है
कहाँ पर,
लास्ट लाइन छठी देशों ने 22 सागरोपम और सातवीं में बाद में कुछ लिखा नहीं।
ये क्या है, वो जो शब्द है वो स्टार्टिंग या लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ये नया पैराग्राफ है नहीं है, फिर भी वहाँ उन्होंने स्पेस छोड़ी है, वो गलत है, वो डॉट है तो वो प्राकृत और संस्कृत के बीच वाले की डॉट है, वो हर पेज पर देखना, वो आप ऊपर प्राकृत है और नीचे संस्कृत है हिंदी, प्राकृत और हिंदी के बीच में डॉट डॉट किए उन्होंने, पेज के ऊपर हाफ पेज में प्राकृत है और नीचे हिंदी है।
ये पृष्ठ क्रमांक 27 पर और सातवीं में जो लिखा है लास्ट लाइन लास्ट वर्ड, उसके बाद देशों ने 33 सागर, ये कंटिन्यूएशन में है, यहाँ भले गैप पड़ी है वो उनके प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो नया पैराग्राफ को हम गैप छोड़ते हैं, यहाँ पर वो गैप ऐसे एक दो जगह हो गया है।
ये अगले 30 पेज पर भी ऐसी है, यानी वो स्टार्टिंग वहाँ से होनी चाहिए थी,
अभी उनके क्या हिसाब है मालूम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है,
ये
कंटिन्यूअस सेंटेंस है।
प्रिंटिंग मिस्टेक कहते हैं या कोई जो प्रूफ रीडिंग की वैसी है ये, यानी उसमें कोई शब्द छूटा नहीं है, उसको एक साथ पढ़ना है हमको, या अपने पेंसिल से वो कंटिन्यूएशन में लाइन है ऐसे आप समझ सकते हैं वहाँ। ये हम पहले जो ओ का वर्णन किया था उसमें ये बात हमने देखी थी विस्तार से, छह अंतर्मुर्त कैसे होते हैं, वह नारकियों के ओग वर्णन में कहा है इसलिए यहाँ नहीं कहते। अशेष अर्थात प्रथम से लगाकर छठी पृथ्वी तक की छह पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर चार अंतर्मुर्तों से कम अपनी आयु स्थिति प्रमाण है। वहाँ तो कोई नीचे जाकर वगैरह वगैरह वो बातें नहीं है, तो यहाँ तो क्या नीचे आएगा तिरंजय बांधेगा फिर एक विश्राम लेगा फिर मिथ्यात्व में उसका मरण होगा उसकी बात है, इसलिए तीन अंतर्मूर्त लिए थे, यहाँ वैसी कंडीशन नहीं है। पूछ ही रहे वे चार अंतर्मूर्त कौन से हैं, तो उसका समाधान ये आपके लिए दोबारा बोल रहा है कि छह पर्याप्तियों से सम्यक निष्पन्न करने में एक, सम्यक निष्पन्न करने ने हाँ बोलो भाई देवेंद्र भाई सम्यक तो प्राप्त करना हाँ क्या आप क्या कहते
हैं
छह पर्याप्ति पूरी करना इतना ही अर्थ है उसके, सम्यक तो के साथ कोई संबंध नहीं है ना ही प्रायोगिक लब्धि के साथ संबंध है। देखो छह पर्याप्तियों के निष्पन्न करने में एक ऐसा पढ़ो तो भी ठीक, ठीक तरह से निष्पन्न होना ये सम्यक निष्पन्न करना, ये सम्यक्त्व के साथ इसका कोई देना लेना नहीं है, लेना देना हा? विश्राम में दूसरा, यानी इसको हम कुछ गलत में नहीं समझे इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये बात हा? विशुद्धि को आपूर्ण करने में तीसरा, आपूर्ण करने ने पूर्ण करना यानी विशुद्धि को प्राप्त करना, पहले छह पर्याप्ति पूरी हुई फिर विश्राम लिया फिर विशुद्धि की, विशुद्धि के लिए एक अंतर्मुख, फिर तो सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ वो यानी मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया, फिर आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होने का चौथा अंतर्मूर्त है, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ वो एक अंतर्मूर्त, और फिर मरा सातवें नरक के नारकियों में वो फिर मिथ्यात्व में गया फिर तिरंजयु बांधी फिर एक अंतर्मूर्त विश्राम किया फिर वो आगे एक अंतर्मूर्त में मरा, ऐसा था इसलिए वहाँ तीन अंतर्मूर्त घटित होते थे। अन्य पृथ्वियों में पहले से छठे तक मिथ्यात्व का अंतर देखते समय वहाँ जन्मते समय तो मिथ्या दृष्टि फिर सम्यक तो प्राप्त किया पूरे लाइफ टाइम तक सम्यक भी रहा अंत में एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आया और फिर मरा। नहीं 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 पहले भी बांध सकते हैं ना, यहाँ सातवें नरक में तो तिरंजयु बांधने का नियम है इसलिए उसको हमने तीन अंतर्मूर्त घटाए लास्ट में, पहले से छठी नरक का तो मनुष्य भी बांधे ना, वो कहाँ जाता है अपना कंसर्न नहीं है, मनुष्य में जाएगा और मिथ्यात्व के साथ मनुष्य होगा उसमें कोई लेना देना नहीं, परंतु तिरंजयु सम्यक्त्व में नहीं बांध सकता था, तिरंजयु जिसको बांधनी वो तो मिथ्यात्व में जाके ही बांधेगा, इसलिए सातवें नरक के लिए वो कंडीशन थी, पहले छह नरक के नारकी सम्यक्त अवस्था में मनुष्यायु बांधी है बाद में मिथ्यात्व में जाकर मरे तो मरने के लिए एक अंतर्मूर्त काफी उसके। सातवें में पहला नहीं बांधे
हाँ
देखो देखो आपका प्रश्न है सातवें का जो मिथ्यात्व की अवस्था में आयु बंद होगा तो क्या तो स्टार्टिंग में बांधेगा क्या तो अंत में, ऐसा नहीं होता, आयु बंद जब होता है देव या नारकियों में अंतिम छः महीने में ही हो सकता है, वो अंतिम छः महीने में भी उसके वो त्रिभाग त्रिभाग पड़ते हैं, तो ये हमको अधिक से अधिक लेना है अंतर वाला, इसलिए हमने मरण के पहले एक अंतर्मूर्त आयु बांधने वाला जीव पकड़ा, हो सकता है कोई छः महीने पहले भी बांधे, ख्याल है ना, तो तो यहाँ हमको उत्कृष्ट अंतर दिखाना था, सिद्ध करना था। सातवें नरक के नारकियों के लिए तिर्यंचायु बांधनी आवश्यक है। तो तिर्यंचायु जो बांधता है तो मिथ्यात्व अवस्था में ही बांधेगा। कोई सम्यक दृष्टि नारकी आयु बांधेगा तो मनुष्य की ही बांधेगा, है ना। मिथ्या दृष्टि पहले से जो है छठे तक के, मिथ्या दृष्टि जो नारकी है मनुष्य की भी बांध सकता है और तिर्यंच की भी बांध सकता है। ख्याल है क्या मैं बताने जाती? परंतु सातवें नरक का नारकी भले पूरे लाइफ टाइम तक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, वो तो मनुष्य आयु बांधेगा ही, तिर्यंच आयु ही बांधे। ये जो मिथ्यात्व के साथ आयु बंध है ना, वो तो लास्ट में ही बांधेगा आयु। स्टार्टिंग से कोई आयु बांधता ही नहीं। देव है, भोग भूमि के जीव है, उत्कृष्ट आयु वाले, ये जो असंख्यात वर्ष के आयु वाले जो जीव है उनका जो आयु बंध होता है तो अंतिम 6 महीने में ही होता है। फिर उसका कोई 6 महीने पहले बांधेगा या फिर उसके फिर 2/3 1/3 ऐसा हिसाब करते रहना, तो उसके वो जो कुछ यथायोग्य अपकर्ष काल होते हैं वहाँ उसमें बांधेगा आयु, बराबर। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच कर्मभूमि वाले जो है उनके आयु बंध का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो जितनी वो इस भव की जो आयु बांध कर आया है उसका 2/3 1/3 यानी 1/3 बाकी रहे तो उसको पहला अवसर प्राप्त होता है आयु बंध का, उस समय आयु बांधेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिर बचे हुए का फिर 1/3 जब बाकी रहेगा फिर 1/3, इस तरह से ऐसे 8 अपकर्ष काल होते। उसमें भी जिसने आयु नहीं बांधी है तो मरण के 1 अंतर्मुहूर्त पहले वो आयु का बंध करता है। ये मारणांतिक समुदाय में भी हमने देखा था कि जिसने वो तो आयु का बंद किया है वही तो मारणांतिक समुदाय करेगा, ऐसी बात हमने, वो भी अंतर्मुहूर्त पहले होती है। हाँ, कहीं आता है भोग भूमि के लिए 9 महीने का भी, परंतु वो भी 6 महीने लिखा है, यानी अभी हमने समय ज्ञान चंद्रिका में देखा है तो उसी में दोनों ही यानी ऐसे मत दोनों है ऐसे कि हमने पहले भाग में तो 9 महीने पढ़ा था और कर्मकांड में तो फिर उसको 6 महीने बताया था, तो दोनों ही मत है। इतना ही समझना ना कि आप पहले तो नहीं होगा, 9 कहो या 6 कहो, उसके पहले तो नहीं होने वाला। देखो ये हमने देखा अंतर को प्राप्त हुआ, नीचे से 4th लाइन में अंत में, और अपनी स्थिति प्रमाण मिथ्यात्व में रहकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। अब ये अंत में उपशम सम्यक दृष्टिकांत, क्योंकि इतने सागर की आयु है, सागरों की आयु है, तो उसके तो वो तो दो तीन प्रकृतियां तो रहेगी नहीं, एक ही हो जाएगी इतने काल में, तो लास्ट में फिर उसको उपशमिक सम्यक दृष्टि किया, पुनः सासाधन गुणस्थान में जाकर निकला। इस प्रकार 5 अंतर्मुहूर्तों से कम सातवीं के लिए 6 अंतर्मुहूर्त, हाँ क्या, हाँ हाँ यहाँ जो 6 आंकड़ा लिखा है वहाँ 5 चाहिए। तो 5 अंतर्मुहूर्तों से कम अपनी अपनी पृथ्वी की स्थिति वहाँ के असंयत समय दृष्टियों का, ऊपर हमने जो 4 अंतर्मुहूर्त कम देखे थे वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट का अंतर देखा था, और यहाँ असंयत का उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं। उत्कृष्ट अंतर होता है। अब ये पहले और चौथे की बात होगी, अब सासाधन के और तीसरे की करेंगे। सासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। उक्त सातों ही पृथ्वियों के सासाधन सम्य दृष्टि और सम्य मिथ्यादृष्टि नारकियों का अंतर कितने काल होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय है, वो तो उन्होंने पहले समझाया था। अभी बात हुई थी ना हमने, सामान्य नारकियों में भी हुई थी और फिर सातवें नरक के नारकियों की भी बात की थी। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। उक्कस से नवी उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अंतर बता रहे, काल नहीं अंतर। उक्कस से न पलिदो वमस असंख्य यदि भागो, उक्त पृथ्वियों में ही उक्त गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर पल्यपम के असंख्यात भाग है। ये किसकी अपेक्षा है, नाना जीव की अपेक्षा के एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवन की अपेक्षा, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान में डिफरेंस पड़ेगा। जिस प्रकार नारकियों के ओग अंतर वर्णन में पल्लोपम के असंख्यात्वीय भाग की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना चाहिए। यानी कोई जीव उस गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में गया, नाना जीव आए हैं, सभी के सभी अन्य गुणस्थान को चले गए, और कितने ही काल तक कोई जीव उसमें नहीं है, तो कितने काल ऐसे हो सकता है? तो पल्ले के असंख्यात्वीय भाग तक। अब एक जीव की अपेक्षा, एक जीवम पड़ुच्छ जहन्नेन पलिदोवमस्स असंख्य यदि भागो अंतोमोत्तम। दो गुणस्थानों की बात है, इसलिए दो अलग अलग ऑप्शन बताएं। सासादन के लिए जघन्य कितना है? पल्ले का असंख्यात्व भाग। हमें लगता है जघन्य ने एक समय अंतर्मूर्त ऐसा होगा, तो ये सासादन की बात हो रही है। सासादन से वापस सासादन आने में तो उपशम योग्य काल होगा तो ही वो आ सकेगा, क्योंकि उसको फिर उपशम सम्यक्त्व होकर आना पड़ेगा, इसलिए बीच में वो पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण वर्ष जाएंगे। और ये अंतर्मूर्त जो लिखा है वो तीसरे गुणस्थान के लिए है। उक्त गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम का असंख्यात्व भाग और अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि नारकियों के ओघ अंतर वर्णन में प्ररूपित किया जा चुका है, अभी अभी भी हमने उसको देखा था। अब उत्कृष्ट अंतर बताएंगे एक जीव की अपेक्षा। उक्कसेन सागरोवमम तिन्नी सत्त दस सत्तारस बावीस तैतीसम सागरोवमाणी देसुनानी। पहले ऐसा ही सूत्र आया था ना। तो सातों ही पृथ्वियों में उक्त गुण दोनों गुणस्थानों का, यानी दूसरे तीसरे गुणस्थान की बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट, वो क के नीचे वो क्रू करना उसको, कृष्ण जैसा, उत्कृष्ट अंतर क्रमशः देशों न कुछ कम, कितने? एक तीन सात दस सत्रह बाईस और तैतीस सागरोपम है। प्रत्येक पृथ्वी की जो आयु है उसमें से देशोन का, देशोन। इस सूत्र का अर्थ कहने पर सातवीं पृथ्वी के सासादन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का, यहाँ भी जो पहले गैप छुट्टी है वो नहीं चाहिए थी, उसको डैश करना वहाँ या एरो से उसको स्टार्टिंग तक ले आना। नारकियों का उत्कृष्ट अंतर नारक सामान्य के उत्कृष्ट अंतर के समान है। वहाँ जो सामान्य नारकियों में उत्कृष्ट अंतर इसकी सातवीं की अपेक्षा ही तो बताया था, तो सातवीं पृथ्वी का कहो या नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कहो, एक ही बात। क्योंकि ओघ वर्णन में वो ध का घ करना, ओघ वर्णन में सातवीं पृथ्वी का आश्रय लेकर ही इन दोनों गुणस्थानों की उत्कृष्ट अंतर की प्ररूपणा की गई है। जैसे हम कर्म की स्थिति उत्कृष्ट कितनी है तो 70 कोड़ा कोड़ी, और मोहनीय की कितनी है तो 70 कोड़ा, दर्शन मोहनीय की कितनी है, क्योंकि उसकी अपेक्षा दर्शन मोहनीय की 70, उसी की अपेक्षा हमने कर्म की भी उतनी कह दी थी। वैसे यहाँ सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा से ही नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी उन दोनों गुणस्थानों की, या उसका अंतर बताया था। प्रथमादि छह पृथ्वियों के सासादन समय दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर कहने पर वो कैसा निकालते अभी बताते। तिर्यंच अथवा मनुष्य प्रथमादि छह पृथ्वियों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो चाहिए, वहां एक हो शब्द डालना बीच में, पर्याप्त हो, यानी एक आंकड़े के पहले हो डालना, वहां हो लिखना एक के पहले, पर्याप्त हो लिखा आपने, फिर क्या करेगा, विश्राम ले, ये दूसरा अंतर्मूर्त हुआ, फिर विशुद्ध हो तीसरा अंतर्मूर्त हुआ, उपशम सम्यक्त को प्राप्त होकर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, ये चौथा अंतर्मूर्त, फिर मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, उसका अंतर चालू हो गया सासादन का, पुनः अपनी अपनी पृथ्वियों की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर, जैसे पहले नरक का है तो वो एक सागर, अभी पहले और लास्ट में कुछ छोड़ना है उसको, फिर मिथ्यात्व को जाकर एक स्थिति प्रमाण रहकर आयु के अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, दोबारा साधन में आना है, इसलिए उपशम समय और इतनी आयु गई है सागरोपम जितनी, तो उसको तो वेदक होगा नहीं, वहां पर औपशमिक ही होगा। उपशम समय को प्राप्त हुआ, उपशम समय के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर, जाने वर हुआ है, जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर निकला। सासादन में वापस आने के लिए कितना टाइम जाएगा उसकी बात है। इस प्रकार एक समय से अधिक, चार अंतर्मूर्तों से कम, अपनी अपनी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति, यानी चार अंतर्मूर्त में वो एक समय और मिला देना और वो पूरा काल अपनी नरक की जो स्थिति है उसमें से कम करना, उस पृथ्वी के सासादन सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर बताएंगे। अब इन्हीं पृथ्वियों के सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। इन्हीं की यानी किसकी बात चल रही है? सातों ही पृथ्वी। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य विवक्षित पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। जिस किसी पृथ्वी की बात करे उसकी, क्योंकि अलग अलग वहाँ अपनी अपनी आयु अलग अलग है, परंतु वो अंतर्मूर्त सबके लिए पहले और लास्ट में कितने छोड़ना है उसकी बात है। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। जन्मते समय मिथ्यात्व में ही आया है, मिथ्यात्व से सादी मिथ्या दृष्टि है, अभी वहां से तीसरे में चला गया। पुनः मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को जाकर, सादी मिथ्या दृष्टि है तो वेदक सम्यक्त्व तो प्राप्त ही कर सकता है, परंतु बीच में तीसरा गुणस्थान लिया, कोई वापस मिथ्यात्व में जाएगा, कोई सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, सम्यक मिथ्यात्व का तो अंतर चालू हो गया, अंतर को प्राप्त हुआ। और जिस गुणस्थान को गया उसमें अपनी आयु स्थिति प्रमाण रहकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतरकाल प्राप्त हो गया, पुनः मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर निकला, क्योंकि उसमें से तो मरण होगा नहीं तीसरे गुणस्थान में, इसलिए एक अंतर्मूर्त बाद में जिस गुणस्थान में गया और वहां फिर मरा, वो एक अंतर्मूर्त वहां बढ़ गया, यानी मिथ्यात्व अथवा सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व को प्राप्त होकर निकला। इन छह अंतर्मूर्तों से कम अपनी अपनी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण नारकी मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब सर्वगतियों से सम्यक मिथ्या दृष्टियों के निकलने का क्रम कहते हैं। अभी सभी गतियों में ये नियम लागू होगा, सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व है और अभी मरने का टाइम आ गया तो क्या होगा उसकी बात कर रहे, वह इस प्रकार है। जो जीव सम्यक दृष्टि होकर और आयु को बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह सम्यक्त्व के साथ, वो व और त्व है ना, उसके बीच में एक लाइन करना है तो त्व हो जाएगा, व का क कर देना, वहाँ बीच में खाली लाइन एक जोड़ देना तो उसका क हो जाएगा, सम्यक्त्व के साथ ही उस गति से निकलता है। बीच में खाली लाइन कर दो, उसको जोड़ दो, क्या कहा, ख्याल आया विनांग भाई? जिसने सम्यक्त्व में आयु का बंध किया है वो तीसरे गुणस्थान में आ भी जावे तो मरण का टाइम आया तो वो चौथे में जाकर उसका मरण होगा, नहीं समझ? कोई जीव सम्यक दृष्टि है, उसने आयु का बंध कर लिया, सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के साथ आयु का बंध किया है, बाय चांस वो तीसरे गुणस्थान में आ गया, अब मरण का टाइम आया है उसका, तीसरे में तो मरण होता नहीं है, तो उसका तीसरे का काल समाप्त होकर सम्यक्त्व के साथ आयु बांधी थी तो चौथे में जाके मरेगा, वो पहले में जाकर अभी नहीं मरेगा, चौथे में ही जाएगा और वहां ही मरण होगा उसका, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ आयु बंध किया हो और अभी मरण के टाइम में तीसरे में आया हो, तीसरे में तो मर नहीं सकता तो चौथे में जाकर ही मरेगा, वो मिथ्यात्व में जाकर नहीं मरेगा। देखो अथवा अब ये मिथ्या तो में जिसने आयु का बंद किया, अथवा जो मिथ्या दृष्टि होकर और आयु को बांध कर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है, निकलता है ने मरता है। ये तो हमने तीसरे गुणस्थान की जब विशेषता देखी थी ना, गुणस्थानों में पढ़ा था हमने पहले, तो वहां ये बात आई थी। ये खास तीसरे गुणस्थान की विशेषता है, भले वो किसी भी गति का कोई ना, चारों गतियों में ये रूल है। शंकाकार पूछता है यह कैसे जान, हाँ सम्यक मिथ्या, आपका प्रश्न है जो सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, नहीं जरूरी नहीं है। जैसे किसी ने अभी द्विपायन मुनि ने आयु बांधी थी, मुनि अवस्था में बांधी थी और मिथ्या दृष्टि होकर मरे, ये तो तीसरे गुणस्थान के लिए ये रूल है। जैसे और जैसे उल्टा भी देखो ना, मिथ्यात्व के साथ आयु बंध किया है, मिथ्यात्व के साथ श्रेणिक राजा ने मिथ्यात्व के साथ आयु बंध किया था, समय दृष्टि हुआ, शायिक समय दृष्टि हुआ उसका तो मिथ्यात्व में जाके मरने का सवाल ही नहीं है। ये जो रूल है वो तीसरे के लिए है, नहीं नहीं उनका प्रश्न अलग था। क्या प्रश्न था? ऐसा नहीं है, उनका प्रश्न ऐसा था, तीसरे गुणस्थान में तो आयु बंद होता ही नहीं, तो क्या प्रश्न था? तो सम्यक, उनका ऐसा प्रश्न था कि सम्यक से आयु बांधने वाला जीव बोले तीसरे में नहीं गया हो तो मिथ्या तो में गया हो, तो क्या उसके लिए भी ऐसा ही रूल है कि सम्यक में जाकर मरे? तो ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि समय दृष्टि, समय दर्शन के साथ आयु बंद किया है, बाद में मिथ्यात्व में जाकर मरा, ऐसा हो सकता है? और किसी ने मिथ्यात्व के साथ आयु बंद किया है, हमने देखा था मिथ्यात्व के साथ आयु बंद हुआ है, चारों गति का आयु बंद हो सकता है किसी का, और फिर सम्यक दृष्टि होकर मर सकता है, इतना ही नहीं क्षायिक भी हो सकता है। ये तीसरे के लिए ये उपदेश है। शंकाकार पूछता यह कैसे जाना जाता है, तो उसका समाधान आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। यहाँ तक तो ये नरक गति की बात हो गई और ये जनरल रूल भी एक बता दिया, अब तिर्यंच गति की बात करेंगे। तिरिक्ख गति है, तिरिक्खेसु, यहाँ एक्चुअली ये बोल्ड होना चाहिए था, सादी है वो प्रिंट, तिरिक्ख गति है, तिरिक्खेसु मिच्छा दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। हमें मालूम है तिरंच गति में तिरंच की क्या बात है, चारों ही गति में मिथ्या दृष्टि जीव तो हमेशा ही होंगे, नाना जीव की अपेक्षा बात है। तिरंच गति में तिरंचों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य अंतर बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतो मुहूत्तम, मुहूत्तम हुआ है उसको मुहूत्तम करना, तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, क्योंकि तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव को अन्य गुणस्थान में ले जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः उसी गुणस्थान में लौटा ले जाने पर अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर प्राप्त होता है। अब बोलिए ये अन्य गुणस्थान में हम कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं उनको? हाँ बोलो, हाँ कौन कौन से गुणस्थानों में ले जा सकते? तीसरे को क्यों छोड़ा? तो यानी पहले से अन्य गुणस्थानों में यानी तीसरे में या चौथे में या पांचवे में जाकर वापस लौटना, जो अन्य छोटा में छोटे जघन्य अंतर्मूर्त काल हो सकता है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल मिथ्यात्व का बताया, काल यानी अंतर, अंतर का काल, मिथ्यात्व से अन्य गुणस्थान में गया और वापस मिथ्यात्व गुणस्थान में आया, तो ये उसका जघन्य अंतर हुआ वो बता रही है। अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर होता है। अब उत्कृष्ट बताएंगे। उक्कसेन तिन्नी पलिदोवमाणी देसुनानी मिथ्यात्व के मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर, यानी मिथ्यात्व में से सम्यक्ति हुआ और वापस मिथ्यात्व में आ गया। जैसे हमने सातवें नरक में 33 सागर में कुछ कम कर दिया था, अभी हमको तिर्यंश पर घटाना है, तो अधिक से अधिक आयु कितनी होती है कोई तिर्यंश किसी तिर्यंश की, तीन पल्ले वाले, तो वहां पर ये घटित करेंगे। तिर्यंश मिथ्यादृष्टि जीवों का जोवों का हुआ, जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्योपम है। अब ये कैसे है वो बताएंगे। इसका उदाहरण मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपम की आयु स्थिति वाले कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुआ और 2 मास गर्भ में रहकर निकला। ये उसके बाद क्या हुआ वो बाद में बताएंगे, पहले बीच वाली कुछ एक पैराग्राफ अन्य बात। हाँ, वो 2 मास गर्भ की वो वहाँ कंडीशन है। हाँ, तिर्यंचों में, मनुष्यों में तो वो तो 9 मास से 7 मास भी कर देते हैं। यानी वो सादी मिथ्या दृष्टि लिया, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं लिया? मिथ्यात्व का अंतर हमको घटाना है ना, मिथ्यात्व में से अन्यत्र जाने वाला, वहां सम्यक्त्व के साथ तिर्यंचों में जन्मने वाला या तो कृतकृत्य वेदक होता है या तो क्षायिक समय दृष्टि होता है। यानी उसका कोई मिथ्यात्व का अंतर उसमें तो घटित होगा नहीं, इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि जीव लिया, 2 मास गर्भ में रहकर निकला। अभी अन्य कुछ चर्चा बीच में करे, देखो इस विषय में 2 उपदेश हैं, वे इस प्रकार है। तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 2 मास और मुहूर्त पृथक्त्व से ऊपर, पृथक्त्व बात आई ना कल हमने देखे थे, 3 से 9 तक को पृथक्त्व कहते, तो मुहूर्त पृथक्त्व यानी कुछ मुहूर्तों में सम्यक्त्व और संयमासंयम को प्राप्त करता है। ये तो जनरल कंडीशन, जनरल बात हो रही है, उत्तम भोग भूमि की नहीं है, ये कैसे जाना? ये संयता संयत कहा, इसलिए यहाँ जनरल तिर्यंचों के जन्म के बाद कितने काल में वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है उसकी ये जनरल बात यहाँ बीच में डाली है। उसके बारे में 2 उपदेश है। एक पहला उपदेश कौन सा है, तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो 2 मास और मूर्त पृथक्त्व से ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयम को प्राप्त करता है, और मनुष्यों में गर्भकाल से प्रारंभ कर, यानी गर्भ में आया उससे प्रारंभ कर अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर सम्यक्त्व संयम और संयमासंयम को प्राप्त होता है। ये एक रूल उन्होंने मनुष्य तिर्यंच संबंधी बताया। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है, यानी 2 उपदेश है ना, उसमें से 1 उपदेश तो यह है। अब दक्षिण प्रतिपत्ति किसको कहना, तो दक्षिण कहो, ऋजु कहो या आचार्य परंपरागत कहो, ये तीनों शब्द एकार्थक है। यानी ये आचार्य परंपरागत उपदेश ऐसा है, तिर्यंचों के लिए 2 मास और मुहूर्त पृथक्त्व, और मनुष्यों के लिए 1 अंतर्मूर्त प्लस 8 वर्ष वो गर्भ, उसके अंदर वो गर्भ का भी काल गिनना। अब ये दूसरा जो पक्ष है या जो दूसरा जो उपदेश है जिसको उत्तर प्रतिपत्ति कहेंगे वो अब बताने जा रहे हैं। कौन सी है, कि यह तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 3 पक्ष 3 दिवस और अंतर्मूर्त के ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयम को प्राप्त होता है। ये दूसरे आचार्यों का किसी का ऐसा उपदेश है। और मनुष्यों के लिए क्या कंडीशन है, मनुष्यों में उत्पन्न हुआ जीव 8 वर्षों के ऊपर सम्यक्त संयम और संयमासंयम को प्राप्त होता है। वहाँ अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष लिए, यहाँ 8 वर्ष लिए, यह उत्तर प्रतिपत्ति है तो उत्तर कहो, अन रुजू कहो, वहां रुजू कहा, उसके लिए आगे अन लगाया, अनरुजू, अनरुजू, और आचार्य परंपरा से अनागत, वहां आचार्य परंपरागत यानी आचार्यों के परंपरा से आया हुआ, यहां आचार्य परंपरा से अनागत, ये तीनों एक अर्थवाची है। ये तो कितना काल लगता है उसके बारे में जो दो मत है वो बीच में बता दिया। अब हम अपना पहले से फिर शुरू करेंगे। ऊपर के पैराग्राफ में हमने क्या किया कहा था, तीन पल्ले की आयु स्थिति वाले कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हुआ, दो मास गर्भ में रहकर निकला। अब नीचे के पैराग्राफ पढ़ना, पुनः मूर्त पृथत्व से विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। ये बीच वाला के अब अपने तो खाली दो मत है उसको बता दिया। पश्चात अपनी आयु के अंत में आयु को बांध कर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ये मिथ्या दृष्टियों का अंतर देख रहे हैं, नहीं नहीं मिथ्या दृष्टियों के उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, हाँ बराबर मिथ्यात्व का अंतर। वेदक सम्यक्त्व अपनी आयु के अंत में आयु को बांधकर यानी सम्यक्त्व के साथ ही आयु को बांधे, उसने सम्यक्त्व में ही आयु का बंध किया, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ये उसका अंतर तो इतना ही गिनना मिथ्यात्व का। पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हो काल करके यानी मरण करके सौधर्म ऐशान देवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदि के मूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से और आयु के अवसान में उपलब्ध दो अंतर्मूर्तों से कम तीन पल्योपम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। अब अगला सूत्र, शासन सम्मादिट्ठि पहुड़ी जाव संजदा संजदा ति ओघम। तिरियंचों में संयता संयतक को ले लिया, नारकियों में तुमने चार गुणस्थानों की चर्चा की थी, तिरियंचों में सासाधन समय दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि ओघ के इन चारों गुणस्थान संबंधी नाना और एक जीव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कालों से तिरियंच गंती संबंधी इन्हीं चार गुणस्थानों संबंधी नाना और एक जीव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कालों का कोई भेद नहीं है। फिर भी वो हम भूल गए होंगे तो इसलिए फिर बताते हैं, वह इस प्रकार है। सासाधन जीवों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम का असंख्यात्व भाग है। नाना जीवों के लिए पल्योपम का असंख्यात्व भाग उत्कृष्ट अंतर है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का असंख्यात्व भाग है। सासाधन के लिए यहाँ पर अंतर के महात्म्य को बतलाने के लिए अल्प बहुत्व कहते हैं। सासाधन समय दृष्टि राशि सबसे कम है। देखो सासाधन समय दृष्टि कितने हैं तो पल्ले के असंख्यात विभाग है, नाना जीवगत उसी का काल असंख्यात गुणा है। हमने काल का जब बताया था यह तो यहाँ तो अंतर की बात हो रही है, नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कितना है ऐसा हमने देखा था, तो भी पल्ले का असंख्यात भाग, तो हर तो पल्ले का असंख्यात भाग है, फिर भी पल्ले का असंख्यात भाग कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो सबसे छोटा वाला में हमने देखा था सासाधन समय दृष्टि की जो राशि यानी जीवों की संख्या वो सबसे कम है, सबसे कम में भी पल्ले का असंख्यात भाग ही लेना है। हाँ उससे असंख्यात गुणा नाना जीवों की अपेक्षा उसका काल है, दूसरे गुणस्थान का काल यानी लगातार दूसरे गुणस्थान में जीव कोई ना कोई रहे, सतत रहे, निरंतर रहे, तो उसको काल कहेंगे, वो उससे बड़ा है। फिर उसके बाद उसी का अंतरकाल, अंतरकाल यानी लगातार कोई भी जीव उसमें नहीं है ऐसा अंतर है, वो वाला जो पल्ले का असंख्यात भाग है वो उससे असंख्यात बना, तो उसी का अंतरकाल, ये अंतर और काल के बीच का कॉमा निकाल के दोनों को जोड़ देना, अंतरकाल एक शब्द है, उसी का अंतरकाल असंख्यात गुणा है। यह अल्प बहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओं में सासाधन सम्यक दृष्टियों का कहना चाहिए। यानी सासाधन सम्यक दृष्टियों की जब जब बात आई तभी ऐसे ही समझना उसमें। नाना जीवगत काल यानी क्या? नाना जीव का काल लगातार नाना जीव कोई ना कोई सम्यक सासाधन में आते ही रहेंगे, क्योंकि जो सासाधन में आएंगे वो चले जाएंगे, नए जीव उसमें उत्पन्न होंगे, गिर कर आएंगे ना, तो लगातार निरंतर ऐसा बनता रहे, यानी हमेशा उसमें कोई ना कोई जीव है, तो कितने काल तक ऐसा हो सकता है कि इतने काल के बाद जाकर नियम से अंतर पड़ेगा ही, तो उसको कहते हैं वो भी पल्ले का असंख्यात भाग है। तो ये पल्ले का असंख्यात भाग वाली जो संख्या है काल की, नाना जीवों की अपेक्षा वो लगातार निरंतर काल है, उसको काल कहेंगे। एक जीव की अपेक्षा तो एक समय से लेकर छह अवली तक ही काल होता है, परंतु छह अवली के जीव निकल जावे दूसरे उसमें आते रहे, तो ये तो नाना जीवों की अपेक्षा सासाधन चलता रहे, तो लगातार चलता रहेगा और बाद में अंतर पड़ेगा, तो ऐसा कितने काल तक हो सकता है? तो पल्ले के असंख्यात विभाग तक, क्योंकि हमने मिनिमम देखा था सभी आए और सभी चले गए, तो एक समय में ऐसा घटित हो सकता था। एक काल में और अंतर में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, ख्याल है ना? काल में यानी उसमें रहने का काल, अंतर यानी में कोई उसमें नहीं है ऐसा काल, उसको अंतर कहेंगे। यानी ये अल्प बहुत्व तीन है उसमें से अपने को पता चलता है। सासाधन समय दृष्टि जीवों का अंतर एक जीव की अपेक्षा, उन्होंने क्या बताया कि ओघ के समान है, फिर भी यहाँ हमको याद दिला रहे एक जीव की अपेक्षा अंतर है, वो जघन्य से कितना होगा? जब एक जीव की अपेक्षा कहते हैं तो दोबारा वो उपशम सम्यक्तों के प्राप्त करके सासाधन में आने वाला है, तो जघन्य अंतर उसका पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण हो जाएगा। ख्याल आता है? हाँ। तो जघन्य से पल्योपम का असंख्यात भाग है। इस काल के साधक उपदेश को कहते हैं वह इस प्रकार है। वो कैसे घटित होता है ये बात बता रहे। त्रस जीवों में रहकर जिसने सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों का उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति के सत्वरूप सागरोपम पृथक्त्व के पश्चात उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। यानी जब सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता सागरोपम पृथक्त्व से नीचे हो जाती है, तब दोबारा वो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। अब उसको सासाधन में लाना है ना, तभी तो अंतर चालू हो जाएगा। यदि इससे ऊपर की स्थिति रहने पर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है तो निश्चय से वेदक सम्यक्त्व को ही प्राप्त होता है। लिखा ना, ये वेदक योग्य काल होता है। जब तक उनकी स्थिति इतनी घट न जावे वो सासाधन समय यानी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। और एकेंद्रियों में जाकर ये तो त्रसों के लिए बताया, त्रसों के लिए कितनी घटाई उसने, सागरोपम पृथक्त्व इतनी कर दी। एकेंद्रियों में जाकर जिसने एकेंद्रिय पर्याय में उद्वेलना की है उसकी बात अब बता रहे। एकेंद्रियों में जाकर जिसने सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की है, वह पल्योपम के असंख्यात्व भाग से कम सागरोपम काल मात्र सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति सत्व अवशेष रहने पर त्रस जीव में उत्पन्न होकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। एकेंद्रियों के लिए और त्रसों के लिए ये जो सागरोपम का जो प्रमाण है वो अलग अलग है। त्रसों में उद्वेलना करते करते वो जब सागरोपम पृथक्त्व इतनी रह जाए तो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। जो एकेंद्रियों में गया है और जिसने वो उद्वेलना की है वो तो सागर में भी कम, कितना कम, पल्ले के असंख्यात भाग से कम सागरोपम इतनी स्थिति कर देता है। और जब वो त्रसों में उत्पन्न हो, क्योंकि एकेंद्रियों में तो सम्यक्त होने का कोई सवाल ही नहीं है, त्रसों में भी संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होना चाहिए, तो ऐसा होकर वहाँ वो उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो गया। इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति उद्वेलन काल चूंकि पल्योपम का असंख्यात भाग है, इसलिए सासादन गुण स्थान का एक जीव संबंधी जघन्य अंतर भी पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र ही होता है। ये इतनी स्थिति करने के लिए पल्य का असंख्यात भाग इतना काल जाता है। उद्वेल ना होकर उनकी स्थिति इतनी घट जावे उसके लिए कम से कम काल कितना लगता है? अधिक से अधिक भले अर्धपुजगल परावर्तन हो, कम से कम काल कितना लगता है? तो इतना, उतने बाद तो उद्वेल ना हो जाती है और फिर वो अनादि जैसा हो जाता है। अपने को अधिक काल की बात नहीं करनी, कम से कम काल कितना आवश्यक है? तो इतने काल में उन दो प्रकृतियों की सत्ता इतनी घट जाती है कि जीव दोबारा उपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। उसके पहले पहले यदि उसको सम्यक तो प्राप्त करना है तो वो वेदक सम्यक तो हो सकता है, उपशम सम्यक तो नहीं। पिनांग भाई, तो अपने को मैं अनादि मिथ्या दृष्टि हो ऐसा कभी नहीं कहना। क्यों? हम थोड़ी सर्वज्ञ हो गए। हम पूछते नहीं हुए आप मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो? मिथ्या दृष्टि भले है परंतु हमने अभी जो इतना पढ़ते ना, कहाँ कहाँ घूमते हैं सारी मिथ्या दृष्टि भी। और ऐसा ये रीना मुझे बहुत बार ऐसे कहते कि ऐसा होता है इतने बार पल्य के असंख्यात बार भी सम्यक तो मिथ्या तो हो सकता है, इतने बार वेदक होता है, इतने बार ये होता है और हम अनादि से हो सकता है। अपना अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा हो, हमने बोला जरूर चल रहा हो, क्यों नहीं, हम नहीं क्यों कहेंगे? हम सर्वज्ञ थोड़े ही है। अभी गए 15 दिन से एक बहन का फोन आया, मैं अभवी हूँ ऐसा मुझे लगता है, वो डिप्रेशन की केस है और बार बार फोन कर रहे हैं। तो क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, अपने को अभवी क्यों मान रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे नाना थे मरने के समय मुझे अभवी कर गए थे इसलिए और वो कहते वो सम्य दृष्टि थे। मैंने बोला सम्य दृष्टि जो, नहीं नहीं वो सम्य दृष्टि जो दूसरा अभवी है कि भवी है के, जान नहीं सकता, मैंने बिल्कुल नहीं जान सकता ये थोड़े उस ये चौथे गुणस्थान वाले का विषय नहीं है ज्ञान का। अभी उसको क्या समझाएं, जैसे बच्चा नहीं मानता है तो माँ उसको गधा कह देती है गधा कहने से वो क्या गधा हो जाता है? बोले सम्यक दृष्टि माँ है और बच्चे को गधा कहें तो क्या होगा? तो ये ऐसा है, तो अभी क्या करें, ऐसे अलग अलग जीव।
नहीं नहीं, वो तो ऐसा बता दिए कि चाल में रहती वहाँ का लालबाग में वोल्टास के पास में
सोसाइटी के सभी लोग
तो
मुझे
वहाँ के चाल के सब लोग मेरे को तू अभवी है तू अभवी करके चिढ़ाते तो मेरे को बहुत दुख होता है। मैंने कहा वो क्या सम्यक दृष्टि है क्या सब लोग जो चिढ़ाते वो? नहीं उसका कहना है कि सम्यक दृष्टि जानता है इसलिए वो हमको बार बार फोन करके पूछाती है कि उसको बहुत बार समझाया भी ऐसा नहीं होता है फिर भी वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। अब
ये
क्या
तो
करें,
सम्यक दृष्टि हुआ तो क्या सर्वज्ञ ही बना देते उसको? ये थोड़े उनके ज्ञान का विषय है।
फोन रख भी नहीं सकते इतना वो रो रो के ऐसा मतलब पैथेटिकल बात करती है तो उसको समझावे समझावे अभी वो समझा के फिर हम भी इतने थक गए हैं कि अभी हमको समझाने वाला कोई चाहिए।
जैसे अर्धपुद्गल परावर्तन जो घूम रहा है, एक बार जिसने उपशम श्रेणी से भी चढ़कर उतरा होगा कोई जीव, हमने देखा ना, दोबारा वो अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद फिर वो मोक्ष जाएगा, तो उन बीच के काल में उसके परिणाम कैसे कैसे होते होंगे, कितने कितने अलग अलग पर्याय में वो निगोद में भी कितना काल बिताएगा, ख्याल आता है ना? तो ऐसे किसी के परिणामों के साथ उसको भव्य अभिव्य पुनः हम नहीं कह सकते। अभव्य भव्य जीव भी कितने हैं ऐसे है कि तो अनंत काल तक भले वो नित्य निगोद में भी रहे तो परिणामों से उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? और ये तो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। अभी किसको उपदेश में ऐसा, अरे तू क्या अभव्य जैसा कर रहा है, कर ना कार्य, भव्य हूँ कि अभव्य हूँ इसके बारे में क्यों सोच रहा है? यानी वो सोच कर रोने में ही टाइम जा रहा है, उतने काल में तो अपना कार्य हो जाता है, तो भवी है वो सिद्ध कर दो, सम्यक तो प्राप्त कर दो, ऐसा कहीं ख्याल है? ऐसा कुछ करना नहीं हो की बातें या कुछ सुनकर ये जिसको कहते ना रोना चालू करते हैं, तो जो पुरुषार्थी वो थोड़ी ऐसे चीजों से रुकता है। हाँ ये सब ऐसे भी उनका कहना है, कोई ऐसे विभाव भाव नहीं जो हमने नहीं किए. देखो अभी हम देखते हैं यहाँ. ये भाव परावर्तन में तो कितने कितने भाव कर चुके हम. हाँ, करना, उनका कहना है करना ही चाहिए, ऐसा नहीं, उतना काल जाता है. जैसे नित्य नियोगोद में है, उनका भी इतना काल तो बीत गया है. उन्होंने तो एक जैसे परिणाम के कभी ऐसे शुभ नहीं किए कि वो द्विंद्रिय में भी आ जावे. वो काल समझाना है. और ये जनरल स्टेटमेंट है, उसकी जो सूक्ष्मताएं होती है वो तो जितना जाने उतने कम. तो ये एकेंद्रियों के लिए और त्रसों के लिए उद्वेलना करके जो काल घटाता है उसका अलग अलग प्रमाण है. एकेंद्रियों में वो सागरोपम से भी पल्ले से असंख्यात विभाग से कम है, और त्रसों में जो उद्वेलना करने वाला है उसको उपशम समय तो प्राप्त करने का अवसर कब है, तब सागरोपम पृथक्त्व यानी साधिक सागरोपम ऐसा कहा है वहां पर. तो ये जो उद्वेलना करने का काल है वो कितना है, पल्ले का असंख्यात अभाव है. इसकी उसके पहले जीव दोबारा उपशम समय तो प्राप्त नहीं कर सकता. ये हमको जघन्य काल घटित, जघन्य अंतर घटित करना है, वो इसकी बात चल रही. देखो तीसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ. इन स्थितियों से कम शेष कर्म स्थिति उद्वेलन काल, चूंकि पल्लोपम का असंख्यात अभाव है यानी उद्वेलना करने के लिए इतना काल बीच में जाता है, इसलिए सासादन गुणस्थान का एक जीव संबंधी जघन्य अंतर भी पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र ही होता है. ये उन्होंने दो तीन बार अभी तक समझाया है और अब हमने भी उसको समझा है. अब उत्कृष्ट अंतर समझाएंगे. सूत्र में तो उन्होंने इतना ही बता दिया कि जो पहले हम पढ़े वही वैसा ही है, फिर भी हमको याद दिला रहे. सासादन गुणस्थान का एक जीव संबंधी उत्कृष्ट अंतर. उत्कृष्ट अंतर है ने? वो सासाधन से छूट गया है. अभी गैप मैक्सिमम कितना पड़ेगा, तो अंतर देशोन अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है. पर यहां जो विशेष बात है उसे कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि एक तिरियंच. तीनों कर्णों को करके सम्यक्त को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छेद कर और अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण करके, किसको, संसार को, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ और सासादन गुणस्थान को गया. पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त होकर यानी सासादन का अंतर चालू हो गया उसका. फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण करके द्विचरम भव में पंचेंद्रिय तिरियंचों में उत्पन्न होकर. द्विचरम क्यों लिया, यहाँ तिरियंचों की बात चल रही, इसलिए तिरियंच और मिथ्या दृष्टि ये अपना क्राइटेरिया है. तो वो तिरियंच घटित करने के लिए लास्ट बटन उसको लेना है. यहाँ तिरियंचों में उत्पन्न होकर और मनुष्यों में आयु को बांध कर, पहले मनुष्य आयु बांधी उसने, तीनों कर्णों को करके उपशम सम्यक्तों को प्राप्त हुआ. इतना काल बिताया है, अब उपशम समय होकर फिर सासादन में आएगा, तब उसका अंतर ये घटाएंगे. पुनः उपशम सम्यक्त के काल में मनुष्य गति के योग्य आवली के असंख्यात वे भाग मात्र काल के अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ. इस प्रकार से उक्त अंतर लब्ध हो गया. अब ये आवली का असंख्यात भाग का क्या प्रकरण है वो जरा समझने जैसा है, उसको कल ही समझेंगे. जावाणी के ज्ञान